शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
ओम शांति। हाथ हिला के स्वागत करेंगे राजू भाई। शाबाश, वेरी गुड। आपको मुरली रोज मिलती है ना? मिलती है। कहाँ से आती है? मधुबन से आती है। फिर मधुबन में कौन बैठ करके उसको बनाता है? बाबा के महावाक्यों से कंपोज करने का शुरुआत हमारे राजू भाई करते हैं, तो बताओ कितनी खुशी होनी चाहिए। तो एक हाथ की बजाय दो हाथ की ताली बजा लो। हाँ। आपको पता हो 72 में आप बाबा के पास आ गए थे, 60 में आपके घर में कानपुर में आपका जन्म हुआ, और 76 में मनमोहिनी दीदी ने ये कार्य इनके साथ बैठ करके दीदी इनको ये दे देते कंपोज करने का। कंपोज माना क्या भाई साहब, थोड़ा हमको समझा देना, क्योंकि मुरली जो बाबा कहते थे उसको सरल उसमें वरदान वगैरह बनाकर कैसे उसका सार हम भेजे, वो सेवा वो आपने शुरू की। इसलिए आप देखो दीदी आपको पत्र पुष्प पढ़ के सुनाती है ना मंथ में एक बार, तो उसमें समाचार है, देश विदेश के ज्ञान के पॉइंट है, वो भी मधुबन की सेवा आप संभालते हैं। और आपको मालूम हो कि दादियां जो पत्र देती हैं वो भी आप भेजते हैं हम सभी को। और शाश्वत योगी खेती का नाम सुना है ना हिसार, तो फिर हरियाणा तो पूरा एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे वहां पर। अच्छा, तो उस संबंधित जो सेवाएं हैं, और आजकल एक ग्राम दत्तक योजना भी है आपकी रूरल विंग में, ये भी चल रही है ना भाई साहब, थोड़ा सा वो भी सुनेंगे क्योंकि आपके भी काम आ सकता है। और खास आपकी विशेषताएं क्या है? बाबा की मुरलियों के महावाक्य बहुत सारे कंप्यूटर में हैं इनके, ठीक है। तो अभी एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा है मुझसे, तो मैंने कहा मैं राजू भाई को दे देती हूँ। उन्होंने पूछा है कि अगर बहुत कठोर होते हैं तो भी लोग हमें पसंद नहीं करते, फेंक देते हैं, है ना? अगर बहुत हम लचीले हो जाते बहुत ज्यादा तो लोग हमें खा जाते हैं। इसलिए हमको बीच के लेवल में जो नम्रता बाबा कहते हैं, तो नम्रता और अभिमान से कैसे सुरक्षा कवच है उनके बारे में उनको स्पष्टीकरण चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है बेफिक्र भाषा इंद्रिय सुख, उसके ऊपर भाई साहब बाबा के अनमोल खजानों से हमको शेयर करेंगे। राजू भाई साहब, ओम शांति।
ओम शांति। कितनी बातें सुननी है, एक घंटे के अंदर आपको कितना सुनाएंगे, फिर भी 60 में सब बातें लेंगे। रामानुसार बेहद का बाबा है, बेहद का परिवार है, देश और विदेश में बाबा के बहुत से केंद्र हैं, और बाबा अपने बच्चों को कहीं न कहीं से भेजता रहता है। तो इस बार मुझे 15-20 दिन के लिए अफ्रीका टूर पर जाने का चांस मिला था। अफ्रीका जानते हो आप, बहुत गरीब देश है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम 3 कंट्री में गए। एक केनिया जहाँ हमारा मेन सेंटर है नैरोबी, निमंत्रण था लेगोस का, लेगोस है नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका। तो केनिया में बाबा के बच्चे गुजराती हैं, अधिकतर गुजरात, वहाँ के अफ्रीकन तो मैं समझता हूँ 5% 10% हैं। 100 विद्यार्थी अगर बाबा के गुजराती हिंदी बच्चे हैं तो 5-10 वो भी हैं। तो उनकी 2 दिन की रिट्रीट थी केनिया में, और पूरे ही केनिया के 10 सेंटर्स के भाई बहनों को उन्होंने बुलाया था, वहीं रहे सेंटर पर। बहुत बड़ा मकान है, 60-70 लोगों के रहने की व्यवस्था है। तो तो सेंटर पर ही रहे और वहाँ के लोकल लोग आते जाते थे, बाकी दूर वाले वहाँ रहते थे। तो दो दिन में मैं 30 अप्रैल को पहुँचा, शाम को स्वागत का फंक्शन हुआ, पहली और दो को रिट्रीट थी। और उस रिट्रीट में कुछ टॉपिक्स मुझे दिए थे क्लासेज की, अधिकतर तो बाप दादा का इशारा है अब योग की शक्तियों को बढ़ाओ, समय अनुसार अचानक के पेपर सब तरफ आ रहे हैं, बहुत भय का वातावरण है सब तरफ, चिंता भय दुख ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जो आप देखते हैं सुनते हैं समाचार, और कभी कभी ब्राह्मण बच्चों को भी उनका सामना करना पड़ता है। हर बीमारी की दवाई क्या है, हर बीमारी की, हर परिस्थिति की, हर समस्या की दवाई बाबा कहता है केवल याद की यात्रा है, योग बल है। आज भी बाबा ने विशेष इशारा किया याद का बल बढ़ाओ, तो समय अनुसार इसी के ऊपर क्लासेस चली। दो दिन वहाँ पर बहुत अच्छी भट्टी रही, उसके बाद एक दूसरे सिटी, दूसरी कंट्री थी तांजानिया, उसका राजधानी दारुसलम, वहाँ जाना हुआ, वहाँ भी बहुत अच्छा सेंटर है। बाबा ने सब गुजराती बच्चों को निमित्त बनाया है और सब स्थान पर अपने मकान हैं, बड़े सेंटर हैं, वहाँ भी 24 घंटा रहना हुआ और वहाँ के बच्चों को 3-4 क्लासेज मिली। जहाँ जाते हैं वहाँ साइट सीन भी दिखाते ही हैं। पहली बार मैं अफ्रीका गया था तो वापस जब आए तो केनिया में सबसे बड़ा एक जंगल है जहाँ पर सब प्रकार के जानवर खुले रहते हैं। अफ्रीका का जंगल सुना होगा आपने डिस्कवरी के अंदर, वहाँ के शेर चीते हाथी हिरन इनके जानवरों के बहुत अच्छे सीन आते रहते हैं। तो उस स्थान पर मुझे एक छोटे फ्लाइट से लेके गए 12 सीट वाले से, और फ्लाइट जहाँ उतरता है वहाँ पर रनवे नहीं है, कच्ची जमीन में उतार देते हैं, दौड़ाते हैं। नया अनुभव था और गाड़ी ऐसी थी जो हम उस खुली गाड़ी में बैठ करके सभी प्रकार के जानवर देखे, एक नाइट वहीं रहे टेंट हाउस में, और वहां से फिर पूरा करके लेगोस गए। लेगोस वहां से 6 घंटा फ्लाइट है, 6-7 घंटा वहां से लगता है, यहाँ से नैरोबी 6 घंटा और 6 घंटा फिर उधर, 5 घंटा का समय का अंतर पड़ता है। तो उस देश की हालत तो बड़ी खस्ता हालत है, खस्ता हालत ऐसी है कि एरोड्रम ऐसे ही बने हुए हैं घरेलू जैसे, कोई भी हमारे पास भारत के अंदर तो प्लेन में जाओ तो कितनी सिक्योरिटी है, कितने इलेक्ट्रिक के साधन हैं चलने के उतरने के, वहाँ पर सब मैनुअल है, इलेक्ट्रिक ही नहीं उस देश में। चेकिंग भी ऐसे करते हैं, खुलवाते हैं सामान चेक करने के लिए, कोई ऐसी चीज तो नहीं लेके जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार इतना है कि अगर आप 5-10 रुपया ऐसे पकड़ा दो तो कहेंगे जाओ। तो वहाँ देखा हमने कि सब काले लोग हैं वहाँ के, नाइजीरियंस, लेकिन देश बहुत गरीब है। और बाबा के बच्चे सबसे साहूकार हैं, सबसे साहूकार माना वो प्रांत में, वहाँ पर केवल सिंधियों की फैक्ट्रियाँ हैं, जितने सिंधी हैं बाबा के बच्चे जहाँ जहाँ भी सेंटर्स के निमित्त बने हैं उन्होंने सबने लेगोस में कमाई की है। बाबा का एक परिवार है, सुना होगा आपने, चंद्रा बहन जो चंद्रमयी दादी थी हमारी, चंद्रमयी दादी की बड़ी बहन बम, उनका पूरा परिवार जो है वो लेगोस में है। और उनका जो अभी बेटा है चंद्रा बहन का बेटा प्रकाश भाई की 15 फैक्ट्रियां हैं और वो सब प्लास्टिक बहुत सारी चीजें बर्तन सब बनाते हैं। सिंधियों का वहां साम्राज्य है पूरा और सिंधियों के निमंत्रण पर ही मैं वहां गया था। 8 दिन वहां रहे और 8 दिन में 4 फैक्ट्रियों के अंदर प्रोग्राम, 2 मंदिरों के अंदर प्रोग्राम और बड़ा सेंटर है। सेंटर पर 24 घंटा लाइट नहीं है लेकिन 24 घंटा जनरेटर चलते हैं। तो वहां पर भी नाइजीरियन के लिए 2 प्रोग्राम रखे थे, एक योगिक खेती का क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है और सभी समझ रहे हैं कि अभी जितने रोग जितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं वो हमारे भोजन से हो रही हैं, अन्न से हो रही हैं। आपके पंजाब को तो भारत का दुनिया जानती है कि बहुत अच्छी खेती वहां होती है लेकिन अधिक फर्टिलाइजर्स के प्रयोग के कारण, खादें कीटनाशक दवाइयां डालने के कारण आज कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पंजाब से निकली हैं। जलंधर से बीकानेर एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर स्पेशल। बहुत सारी ऐसी भयानक बीमारियां हो रही हैं इन खादों के कारण और विदेश के अंदर ही बहुत जागृति है कि हम सब ऑर्गेनिक करें। बहुत अच्छी जमीन है वहां पर ऐसे कुछ डाल दो तो उग जाता है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब हमने उनको बताया तो 3 घंटे की एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई। 4 एनजीओ के लोग, 20-25 फार्मर्स अच्छे आए थे बड़े बड़े और जर्नलिस्ट साथ में थे कि एक नया सब्जेक्ट था देश के लिए था। तो उन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, क्या करना चाहिए, कैसे करते हो। फिर हमारी वेबसाइट है उस पर सारा उनको बताया दिखाया, वीडियो दिखाई और अच्छी कॉन्फ्रेंस चली। रोड सेफ्टी का सप्ताह था तो उसका एक प्रोग्राम चला। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग क्लासेज थी, जो संपर्क संबंध वाले उनके लिए थी। 8 दिन कैसे बीत गए सुबह शाम पता ही नहीं। और मैं मुरली वाला कहलाता हूँ इसलिए मेरे को कहा मुरली भी आपको सुनानी, अमृत वेला आपको कराना, क्लासेज आपको करानी। तो पूरा ही 8 दिन की सेवा बाबा ने वहाँ खूब कराई। फिर वहाँ से 1 दिन के लिए फिर से नैरोबी आए, वहाँ कई घरों में जाना हुआ और बांधेलियों के लिए स्पेशल क्लास रखा। बंधन तो माताओं को बहुत आते हैं ना। 15 तारीख को वहां थे, 16 तारीख बॉम्बे आए, दादी से मिले, फिर निर्भयर भाई से मिले और 17 तारीख रात को शांतिवन पहुंचे, कल मधुबन आए, आज आपसे मिल रहे हैं। ये था टूर। बाकी बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह है और हम बच्चों को कहता है बच्चे मेरे समान बनो, और कभी कभी मुरली में कहता है जिसके मत्थे मां मिला उसको नींद कैसे आएगी। ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत मामले थे ना, आज तो इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने तो एक ही सामना करने वाला था और सभी गलत नजर से देखते थे। इतना बड़ा व्यापारी, इतना नामी ग्रामी बाबा, इतना मान सम्मान भक्ति पूजा पाठ आदर सब बहुत ऊंचे सम्मान से देखते थे लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और शिव बाबा की प्रवेशता के बाद जब प्रैक्टिकल ज्ञान को लोगों ने अपने जीवन में धारण करना शुरू किया तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा के आगे पेपर पर पेपर सामना करना पड़ा। और लोग कहते थे बाबा और तो आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है लेकिन आप जो ये धारणाएं सुनाते हो ना ये छोड़ दो, ये नहीं कहो, आपकी संस्था बहुत बढ़ जाएगी। तो बाबा क्या कहते थे, भाई मैं तो कहता नहीं हूं, मैं तो खुद गृहस्थी हूं, मैं तो खुद बाल बच्चे वाला हूं, वो कहने वाला ऊपर वाला कहता है ये बच्चे मानते हैं, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को इतना बाबा के ऊपर समर्पित कर दिया, बेफिक्र बादशाह हो गया। कुछ भी हो, कुछ भी लोग कहें, कितना भी सुनना पड़ा। कभी कभी कहता है रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, वाट वेंदे बामन पाता, सिंधी में कहते हैं रास्ते चलते चलते मैं फंस गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन बाबा का इतना निश्चय अटूट था, इतना विश्वास था कि उस बाबा को स्थापना का कार्य करना है, उसको नई दुनिया बनानी है, ये बातें तो आएंगी ही, परीक्षाएं तो आएंगी, बिना परीक्षाओं के कैसे पार होंगे। तो आपने सुना होगा कि बाबा के ऊपर लौकिक संबंधियों ने ही केस कर दिए, कोर्ट कचहरी कर दी, बहुत कलंक लगाने लगे, यहां तक अखबारों में निकाल दिया कि अभी तक बाबा को 400 मिली हैं रानियां, अपने को श्री कृष्ण का अवतार कहलाता है और भी इसको 16,000 और चाहिए, अखबारों में निकाल दिया। कहां बाबा एकदम अथॉरिटी प्योर और कहां पर ऐसी ऐसी बातें कलंक की आई, लेकिन बाबा बिल्कुल उन सबको सुनते हुए बेपरवाह बासा, क्योंकि कराने वाले पर अटूट निश्चय था। वो बाबा बैठा है, वो कार्य अपना करा रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो जहां निमित्त भाव आता है वहां नम्रता स्वतः आ जाती है। जब अपने आप को कहीं हम जवाबदार समझने लगते हैं तो जोश आता है, गुस्सा आता है, फिर रहम आता है कि ये हमारे को ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ अंत तक देखी, अव्यक्त रूप में भी देख रहे हैं, और फिर जिन्हों को उन्होंने गद्दी सौंपी, माना दादियों को जब निमित्त बनाया, तो हमने तो 42 साल तक दादी प्रकाश मणि की, दीदी मनमोहिनी की, अभी दादी जानकी जी की बहुत नजदीक से पालना ली है, साथ रहे हैं और हर बात में उनको हमने देखा, फॉलो किया है, कैसे वो भी नम्रता का कवच पहन करके एकदम जैसे कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन नम्रता के साथ साथ अथॉरिटी नहीं छोड़ी। ऐसी नम्रचित नहीं है जो कोई उनको आकर के फुसला ले, बहला ले, उनके ऊपर अपना दबाव डाल ले, अथॉरिटी भी फुल रखी, सम्मान दिया, नम्र बन करके, झुक करके सबको सम्मान दिया। अगर आज दादियां हमारी हम लोगों को सम्मान नहीं देती और हम कहते अगर बहनें हमारी संस्था में आगे नहीं होती, तो बाबा के जाने के बाद तो पता नहीं कितने टुकड़े हो गए होते। नम्रता का अवतार माताएं बहनें ऐसी बनी जिन्होंने एक एक भाई को इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, सम्मान में भी रही और सम्मान भी दिया। हर बात पूछना, हर बात मीटिंग करके, राय करके करना, सब बातों में बैलेंस रख करके चलाया। मर्यादाओं में कोई लूज हो जाए तो उसके लिए फिर वैसे शीतला हैं, लेकिन अगर कोई मर्यादाएं लूज करे तो काली हैं। बहुत बड़ा बैलेंस हमने देखा है दादियों के जीवन में। साकार में ब्रह्मा बाबा की पालना तो मैंने पत्रों से ही ली, मेरा बचपन था, पिताजी वगैरह ज्ञान में आ गए सब, लेकिन मैं मधुबन में डायरेक्ट नहीं आया। 71 में मैं पहली बार आया जब बाबा अव्यक्त हो गए थे, लेकिन परिवार में पत्रों के द्वारा बाबा बहुत बल भरते रहते थे। हर हफ्ते बाबा का पत्र आता था, और जब मधुबन में आए तो एक लगा कि ये तो अपना घर है, यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है। जबकि मेरे आगे और भी बड़ी पेपर थे, परीक्षाएं थीं, क्योंकि मैं परिवार में इकलौता बेटा था। पिताजी मेरे तीन भाई थे, दो कुमार रहे, एक बचपन में ज्ञान में आ गए, चाचा जी अभी भी हैं यहाँ, और पिताजी के जो बड़े भाई थे वो बहुत भक्ति तंत्र मंत्र जंत्र के चक्कर में थे, उन्होंने भी शादी नहीं की। तो हम परिवार में एक बहन एक भाई, बहन सेंटर पर बचपन में ही चली गई और मैं 15 साल का था, यहाँ आया, यहाँ आकर के हमने कहा हमको यहीं रहना, तो पेपर तो आएगा ही। दादी ने कहा ऐसा कैसे तुमको छुट्टी मिलेगी, आज का ना चिट्ठी लेके आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ परिवार वालों का। तो मैं परिवार का सर्टिफिकेट लेके आ गया फटाफट, क्योंकि पिताजी को बहुत निश्चय था धरती पर भगवान आया है, हमारे बच्चों को भाग्य मिल जाए सेवा करने का। बहुत प्यार से उन्होंने छुट्टी दी और मैं समर्पित हो गया। समर्पित होने के साथ साथ बाबा ने जो सेवाएं कराई, हम देख रहे हैं कई बातें ऐसी आती हैं, यज्ञ के सामने कई पेपर्स आते हैं, लेकिन दादियों ने सहनशीलता का अवतार बन करके दिखाया। पेपर का सामना जरूर किया, सामना करने में भी डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, क्योंकि एक बल एक भरोसा। जब जुम्मेवार कोई बड़ा बैठा होता और ये निश्चय होता है कि हमारे पीछे कोई है, तो फिर जो सामना करने वाले होते हैं वो खेल की रीति से खेलते हैं, सहन भी करते हैं, सामना भी करते हैं। इसलिए मैं आप सबको एक बात जरूर कहूंगा कि आपके पास कितने भी जवाबदारियां हैं, कोई पोस्ट है, पोजीशन है, आपको सब कुछ सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, कभी अहम भी दिखाना पड़ता है, रोब भी दिखाना पड़ता है, कभी नम्रता भी चाहिए। हर बात का बहुत बैलेंस चाहिए। बाबा ने ये कभी नहीं कहा है कि तराजू का पलड़ा एक भारी हो जाए, दूसरा ऊपर चला जाए, एक नीचे चला जाए, एक ऊपर चला जाए। ये हमारी ब्राह्मण लाइफ जितनी बैलेंस से चलेगी उतना ब्लिसफुल होगी और बैलेंस में ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो बहुत आनंदमय जीवन जीने के लिए सदा ध्यान रखो कि मुझे बैलेंस से चलना है। अति किसी चीज की मना है, अति सदा नुकसान करती है। अगर अति नम्रचित बन जाओगे तो भी लोग आपको जीने नहीं देंगे, अति सहनशील बन जाओगे तो भी आपके ऊपर पथरा होगा। इसलिए कहीं पर सामना करना पड़ता है, कहीं नम्रचित बनना पड़ता है, कहीं सहन कर लेना पड़ता है, कहीं झुक जाना पड़ता है। बहुत बैलेंस, हर चीज में बाबा ने बैलेंस सिखाया है। तो जुम्मेवारियां सब संभालो, जुम्मेवारियों से पीछे नहीं हटना, क्योंकि जुम्मेवारियां हमको बहुत अनुभवी बनाती हैं। हम लोगों ने जुम्मेवारियां छोड़ी नहीं, यज्ञ के अंदर भी जो भी जुम्मेवारियां मिली केवल हां जी किया और सब जुम्मेवारियां संभाल रहे हैं अभी तक भी। पहले तुम्हारे ऊपर छत्र छाया थी, दादी थी सामने, दीदी थी, और अभी तो आप यज्ञ में देख रहे हो, दादियां अभी एकदम लास्ट स्टेज है, हमारी एक दो दादियां बची हैं, और वो भी इतनी सेवाएं हैं, इतना विस्तार है, जो हर चीज पर ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए जो बाबा के बच्चे यज्ञ के पिल्लर्स बने, वो जवाबदारियां संभालते हुए अपने आप को कैसे बैलेंस से चलाएं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेफिक्र बादशाह बाबा ने बनाया है। हम लोग दादी को कभी कभी पूछते थे, दादी इतनी सब बहने हैं, इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बातें आती हैं, कभी सरकार के द्वारा आ जाती है, कभी बच्चों के द्वारा आ जाती है, कभी सेंटर्स पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपको नींद आ जाती है, चिंतन नहीं चलता, चिंता नहीं होती। तो बाबा कहती, दादी कहती मैं क्यों चिंता करूं, वो बैठा है ना, ऐसे बोलती थी, मैं क्यों चिंता करूं, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, उसकी सेवाएं हैं। इतना निश्चिंत होके कहती, मैं तो तकिया पर सिर रखती हूँ, बाबा मुझे बुला लेते, मैं सो जाती हूँ। ऐसी बेफिक्र बादशाह की स्थिति दादियों ने हमको प्रैक्टिकल दिखाई। कोई चिंता, कोई गम करने की जरूरत नहीं है, संभालना है, नियम और मर्यादाओं में चलना है, चलाना है, एग्जाम्पल बनना है, बन करके करके सिखाना। कभी कह करके उन्होंने नहीं सिखाया, करके सिखाया। मान लो अगर हम क्लास में नहीं जा रहे हैं तो एक दो बार क्लास करा दिया जनरल में, इसका क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्या है, लेकिन कभी डायरेक्ट उसको डांटा नहीं, उसको कुछ कहा नहीं, नियम मर्यादाएं बताई और फिर प्यार से ऐसे चुटकी काटी कि वो सुधर जाएगा अपने आप। ऐसे सुधारा, बाबा की सुधारने की विधि क्या है, आज मुरलियां आप सब सुनते हो अव्यक्त बाबा की, अव्यक्त बाबा कैसे बच्चों को शिक्षाएं देता है, कितनी ऊंची पोजीशन सुनाता, पहले समान में स्थित करता और इतना ऊंचा समान दिला दिला करके अरे आप तो विश्व के रचयिता हो, मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, बहुत बड़े बाप के बच्चे हो, ऊंचे ते ऊंचे हो, सब बता करके फिर कहता, ये जो है ना ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो हम बच्चों को बाबा कहता है कि जब तक धरनी नहीं तैयार की जाती है तब तक बीज कैसे डालोगे, ऐसे डायरेक्ट डाल दोगे तो बीज खराब हो जाएगा, चिड़िया खा जाएंगी। इसलिए अगर कोई को कोई शिक्षा भी, सावधानी भी देनी है, कुछ कहना भी है, तो उसकी विशेषताओं को देख करके, उसको अच्छी तरह से उसकी धरनी तैयार करके महिमा करके फिर छोटी सी बात इशारे के रूप में दो, टकराव नहीं पैदा होगा। अगर धरनी तैयार नहीं की, आपने एक कहा उसने दो कहा, टकराव हो गया, मनमुटाव हो गया, फिर संबंध बिगड़ जाते हैं। तो बाबा ने दादियों ने प्रैक्टिकल में करके सिखाया है, अनुभव से सिखाया है। कितना सब होते हैं, आप समझते हो यज्ञ के आगे एक पेपर नहीं आया। हम जब आए हैं तभी भी बेगरी पार्ट ही था, और ऐसा बेगरी पार्ट क्रास हुआ है शायद कोई भी परिवार में आप लोगों के सामने ऐसा पेपर ना आया हो। कहां तो सिंध हैदराबाद में 14 साल तक लोगों के मान्यताएं थी कि ब्रह्मा कुमारी ओम मंडली में पिस्ता और बादाम खाते हैं, बड़े मौज से रहते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने आप को सरेंडर किया। बाबा की प्रॉपर्टी कोई कम नहीं थी, हीरे जवाहरात का बिजनेस था। और आपने सुना हो शायद कहानी के अंदर कि ड्रामा अनुसार जब पार्टनर से सौदा किया, बाबा तो चला आया, बाबा को तो इतना नशा चढ़ गया कि अभी ये दुनिया विनाश हुई की हुई, अगली दिवाली नहीं आएगी, सतयुग आया कि आया। बाबा को तो इतना मस्ती चढ़ गई साक्षात्कार होते ही, तो बाबा ने अपने जो लौकिक संबंधी थे दादा विश्व किशोर, सुना होगा दादा विश्व किशोर का नाम, बाबा के भतीजे थे, बाबा के साथ ही बिजनेस था। बाबा ने उसको कहा तुम इस भागीदार से सौदा कर लो, मैं तो चल रहा। अल्लभ की ताराई हुआ रेल का राही, तुरंत बैठा ट्रेन पकड़ी और हैदराबाद चला गया। और फिर जब बिजनेस की सौदा होने लगा, उससे भागीदार से बात हुई, तो उसको तो लग ही नहीं रहा था कि बाबा इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा जवाहरी, इतना हीरे जवाहरात का पारखी एक धक से छोड़ देगा। तो उसने कहा मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं, मैं हीरे जवाहरात में केवल बिजनेस कर सकता हूं, इसलिए ये जो जवाहरात है ना ये आप ले लो हिस्से में, उसका पैसा मुझे दे दो। जो बंटवारा हुआ ना, तो जवाहरात बाबा ने माना दादा ने, जो विश्व किशोर दादा थे, उन्होंने ऐसा फैसला किया जो जवाहरात अपने पास रखी और पैसा उसको उसका हिस्सा दे दिया। और जवाहरात रखने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वो महंगा होता गया, पैसा तो होता तो खत्म हो जाता खा पी करके, लेकिन उसके द्वारा यज्ञ चलता रहा। यज्ञ में जितनी जरूरत पड़ती गई वो बेचते गए और पैसा आता गया और खर्चा चलता रहा। एक परिवार नहीं, बाबा के साथ तीन चार और भी समर्पित हुए, चंद्रमणि दादी का, शांतामणि दादी का पूरा परिवार, और सब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सब सरेंडर हो गए। तो ये सब सरेंडर हुए, यज्ञ चलने लगा, और वो मंडली में क्या 14 साल तक कोई बाहर लेन देन नहीं, कोई समाचार नहीं। बाबा ने इनको खूब अच्छी तरह से सतयुग क्या होगा, ये ज्ञान क्या है, खूब बहलाया, साक्षात्कार कराए, प्यार की पालना दी, योग की भट्टियां कराई, समुद्र के किनारे बिठा के। और जब यहाँ आए आबू में, तो आपको पता होगा सारी ट्रेन भरी, वहां से स्टीमर भरा, सारा सामान लेकर के आए, लेकिन कुछ समय में वो सब खत्म किया खा पी करके। अभी कोई सेवा और कोई आने का सोर्स तो था ही नहीं, तो बहुत सारे पेपर आना शुरू हो गए, कई बीमार पड़ने लगे बच्चे। और बाबा वतन से उसकी दवाई भेजता था, और दवाई भी इतनी वंडरफुल भेजता था जो अगर संशय बुद्धि हो तो भाग जाएगा कि बाबा की ये दवाई, मेरे को ठंडी लगी है, मेरे को सर्दी है, खांसी आ रही है, और बाबा कहते इसको छाछ पिला दो ना, संदेशियों के द्वारा ऐसे ऐसे संदेश आ रहे हैं। दादी निर्मल शांता को दमा की बीमारी है, और संदेशी संदेश ला रही, बाबा ने कहा इसको बर्फ के पानी से नहलाओ, पेपर लेना था ना बाबा को, और बाबा सामने है और संदेश ऐसे आ रहे हैं। बाबा कहता था बच्ची जो बाबा ने ऊपर वाले ने कहा भले करो, लेकिन निश्चय कितना था, फिकर नहीं थी, चिंता नहीं थी, पर एक बल एक भरोसा, बाबा को जीवन दी है वो रक्षक है, और उस रक्षक ने ऐसी रक्षा की अगर वो पेपर नहीं लेता खाने पीने का और बीमारियों के रूप में, तो ये सेवाएं जो आज इतनी बढ़ी है वो नहीं हो पाती है। लेकिन बाबा बेफिक्र बादशाह था, बाबा को पूछते थे कि बाबा आगे क्या करना, दोपहर का भोजन कैसे बने, अरे बाबा वेट एंड, बाबा कहता वेट एंड सी बच्चे, वेट एंड सी, थोड़ा वेट करो, अभी मनी ऑर्डर आ जाएगा कहीं ना कहीं से। माना 9 बजे तक भंडारे में कुछ नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, और 10 बजे पोस्ट में ड्राफ्ट आ रहा है, पैसा आ रहा है, सामान खरीदा जा रहा है, और 1 बजे बेल बज रही भोजन की। कोई दिन भी बच्चों को बाबा ने भूखा नहीं सुलाया, लेकिन पेपर ऐसा था, थोड़े बहुत जो कच्चे थे वो डर गए, भाग गए, चले गए, और क्या बहाना किया कि हम कमा के ले आएंगे, हम कुछ जाके नौकरी करें, कुछ बिजनेस करें। बाबा ने कहा इसकी क्या जरूरत है, बच्चे तुमने, तुमको भगवान ने ज्ञान धन दिया है, ज्ञान रतन दिए हैं, इन रत्नों को बांटो, इन रत्नों को बांटोगे तो ये धन अपने आप दूसरे धन को खींचेगा। तो जिनको निश्चय था, बाबा के एक एक बोल पर विश्वास था, वो गए और चित्र लेकर के नदी के किनारे बैठ करके बच्चों को सबको सुनाना शुरू किया, सेंटर खुलने लगे, निमंत्रण मिलने लगे। लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति को एक रस, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, आप जाना हिस्ट्री हाल के अंदर एक चित्र देखना, एक बाबा एक पहाड़ी के ऊपर लेटा हुआ है झरने के बीच में, और ऐसे एकदम सिर पर हाथ रख करके क्या मस्ती की नींद जैसे कर रहा है, मस्त बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर बाबा के आगे कोई बात आती थी, बाबा कहता था ये मेरे थोड़ी बच्चे, उसके बच्चे है ना, उसने इनको अपना बनाया है ना, वो खिलाएगा, वो पहनाएगा, भूखा थोड़ी रखेगा, वो तो साहों का साह है, सेठों का सेठ है, किसी को भी टच कर सकता है। तो एक बच्चे को ऐसा टच किया, एक दिन एक पैसा भी घर में नहीं था, चार आने भी नहीं, और दोपहर को ब्रह्मा भोजन बनना। 10 बजे के चेक आता है 500 का, 500 का ही आया उस समय, और आया तो सब साधन आए, और उस समय तो सस्ता था ना सब कुछ, आ गया, बन गया भोजन, 400 350 लोग थे। बाबा ने 20 साल के बाद, 20 साल से भी ऊपर समय में, मैं समझता हूं मेरे सामने 74 में, वो परिवार जिसने गुप्त रीति से भेजा था, कोई को पता नहीं था, बाबा को पता था सिर्फ किसने भेजा, वो परिवार यहां मधुबन में आया था, बच्चे बहुएं, बहुत सिंधी परिवार, बहुत बड़ा परिवार अभी भी है, मेरे को लेगोस में मिला, मैंने उसको कहानी सुनाई कि तुम्हारे दादा दादी ने कितना यज्ञ में सहयोग दिया था, और उस समय दिया था जब बाबा को सहयोग की जरूरत थी। तो जब वो परिवार बाबा के घर में आया तो अचानक गुलजार दादी आ गई, यहां उस समय सीजन नहीं थी बाबा की, और दीदी दादी भी शायद बाहर थी, आउटिंग पर थी, और गुलजार दादी यहां थी, तो छोटा हाल था, ये बना नहीं था उस समय। तो बाबा को भोग लगाने के लिए गुलजार दादी उनके सामने बैठी, और जब गुलजार दादी ध्यान में गई तो सबको यही था कि बाबा थोड़ी ऐसे आता बिना बुलाए, लेकिन उस सभा में बाबा आ गए, और बाबा आए वही 10-12 बच्चे थे उनके, सिंधी परिवार था, हम मधुबन के भी 8-10 लोग थे। बाबा उस हाल में आए, छोटे हाल में, और कहते हैं दृष्टि देते देते बहुत प्यार से कि आज बाप बच्चों को समय पर साथ देने वालों को रिटर्न करने के लिए आया है, रिटर्न करने के लिए, भगवान को रिटर्न याद आ गया। फिर कहानी बाबा ने खुद सुनाई कि इन बच्चों ने उस समय मदद की थी जब यज्ञ पर इतनी बड़ी आपदा आई थी कि एक पैसा नहीं, और इन बच्चों ने बहुत गुप्त सहयोग किया। तो उसकी बहुएं, उसकी बेटियां अभी हमको वहां मिली लेगोस में, मैंने कहानी सुनाई कि बाबा को ऐसे समय पर इन लोगों ने साथ दिया, मदद की, और आज जितने सेंटर्स विदेश में हैं, मोस्टली मैंने देखा है सिंधी परिवार बहुत निमित्त बने हुए हैं, बाबा के बच्चे जो विदेश में लेगास का सेंटर, जहां बिल्कुल 24 घंटे बिजली नहीं और 24 घंटे वहां जनरेटर चल रहे हैं। मेरे मुख से ऐसे निकल गया है जनरेटर्स का डीजल कौन देता है, मैं पूछूंगा तो जरूर घर में गया हूं। तो दो भाई निमित्त बने थे, उन्होंने कहा कि एक ये देता एक ये देता, सेंटर का किराया कौन देता, मकान तो होते हैं लेकिन उनको रिन्यू करना पड़ता है, अपने मकान तो प्रॉपर्टी नहीं बनाते हैं। गुप्त रीति से सब प्रकार से बाबा के भंडारे को भरपूर करता है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को बाबा रिटर्न नहीं करेगा, समय पर साथ देता है, मदद करता है, और आज उतने साहूकार हैं, इतने पैसे वाले हैं, आज अंतिम जन्म हम कहते हैं ना, 84वां जन्म है, 84वें जन्म में उनको इतना सब माला माल किया है तो जरूर संगम पर इतना उन्होंने किया होगा ना, बीज बोया होगा, तब तो अंतिम जन्म में भी कोई कमी नहीं उनके पास। तो ऐसा जो बाबा के प्रति कभी भी करते हैं उनको बाबा रिटर्न देने के लिए बन जाता है। लेकिन उस समय की पेपर्स में ब्रह्मा बाबा ने कितना सामना किया होगा, आप समझ सकते हो कि बाबा एक निमित्त और लोगों ने संस्था को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास किए कि बहनें बच्चियां शायद बाबा ने कुछ इनके ऊपर कर दिया है, जादू मंत्र कर दिया है, इन कैसे चली गई घर छोड़ करके सब, और जब इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो जरूर भागेंगी, इसलिए ऐसा पेपर आया, कोई सहयोग नहीं दिया। लेकिन बाबा अचल अडोल एक रस बिल्कुल निश्चिंत, स्थापना तो होनी ही है, सतयुग को आना ही है, और जो हिलने कच्चे पक्के हैं वो तो हिलेंगे ही जाएंगे ही, इसलिए सब प्रकार के पेपर आए, सरकार से पेपर, परिवार से पेपर, लौकिक संबंधियों से पेपर, और प्रकृति ने भी बहुत खेल खेले क्योंकि ये लोग गर्म देश से आए थे, समुद्र के किनारे से आए, और यहां आते इतनी ठंडी इतनी बरसात सब बीमार पड़ने लगे, तो फुल पेपर्स में स्थिति बेफिक्र बादशाह, कोई चिंता नहीं कोई गम नहीं, बाबा की मस्ती देखो बाबा की तपस्या देखो, और हमेशा यही ऊपर वाला है ना वो करण हार, उसका खेल है करण करावन हार बाबा है। तो अगर हम सभी भी अपने व्यवहारिक जीवन में बिजनेस में सब कुछ करते हुए एक बाबा दूसरा न कोई एक पक्का कर लें, एक पर पूरा बलिहार चले जाएं, वो भी सच्ची दिल देखता है, कहते सच्ची दिल पर साहेब राजी, अगर सच्चाई में जरा भी कमी है तो पेपर पर पेपर आएंगे, अगर सच्चाई है सच्चे दिल से हम बाबा को अर्पित हैं तो बाबा हमारा जवाबदार है, हमारा रक्षक है, हम सबको गाइड करने वाला है। तो इस प्रकार से बाबा ने अपनी बेगमपुर की बादशाह की स्थिति बनाई और सदा बच्चों को कहा भगवान के साथ जिनका पार्ट है, गोपियों का गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, अगर इस संगम पर आपने इस सुख का अनुभव नहीं किया तो कब करोगे। वो अतीन्द्रिय सुख, ये इंद्रियों के सुख से जो अंदर का अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे का सुख है, वो प्रभु मिलन में और उसके साथ रूह रिहान करने से आता है, उसके साथ खेल खेलने से, उसके साथ पार्ट बजाने से आता है। गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ आपने शायद एक कहानी सुनी होगी, एक उद्धव थे, एक उद्धव थे, महाभारत में भागवत के खंड में आती है, एक उद्धव थे, उनको भगवान का अनुभव था, ये श्री कृष्ण साधारण नहीं है, ये भगवान का अवतार है, और उसी दृष्टि से उसी भावना से उसे मिलते थे, बात सुनते थे, उसको आदर देते थे, सत्कार देते थे, और गोप गोपियां तो इतना उसको नचाती थी, कभी बांध देती थी, कभी मटकी फुड़वाती थी, मस्ती करती थी उसके साथ, तो उद्धव को सहन नहीं होता था, कहता था ये क्या करती हैं, पगले हैं सब, भगवान को इतना क्या कर रही है, तंग करती हैं, और गोप गोपियां उसके साथ अतीन्द्र सुख का अनुभव करती थी, मस्ती करती थी, उनको भगवान नहीं लगता तो सखा लगता था। तो बाबा को जिन्होंने सब संबंधों से अपना बना लिया, सिर्फ भगवान नहीं, भगवान कहोगे तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, लेकिन बाबा इस समय साकार में हम सबके बीच में है, हर संबंध से पार्ट बजा रहा है, हर संबंध से साथ निभाता, कभी बाप बना लो, कभी शिक्षक बना लो, कभी सतगुरु बना लो, कभी सखा बना लो, कभी साजन बना लो, कभी सर्जन बना लो, कभी बेटा बना लो, बाबा कहता मैं तो गोल गोल हूं ना, जो चाहिए बना सकते हो, बनाती है माताएं, बनाती हो, बाबा का बेटा बनाया है नहीं, बनाया है देखो कैसे बन जाता है, लेकिन क्या कहता है, बनाना माना क्या, जो संबंध आप अपने संबंधियों में लौकिक संबंधियों में कार्य व्यवहार में आते, किसी के पर सम्मान है, किसी के पर बहुत आदर है, किसी के पर समर्पण भावना है, किसी की आज्ञा पर चलना है, किसी के फरमान पर चलना है, बाप टीचर सतगुरु सखा स्वामी सतगुरु जो कहो, अगर वो सब कुछ मेरा है तो हर प्रकार से हर संबंध से उसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट किस प्रकार से है, उसके प्रति हमारी समर्पण भावना किस प्रकार से है, उसकी आज्ञाओं को हम कितना पालन करते हैं, वही है उसके साथ संबंध निभाना। और जो उस रुचि से संबंध निभाते हैं वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अगर उस रीति से संबंध नहीं निभा पाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए संगम युग पर एक एक ब्राह्मण बच्चे को उद्धव नहीं बनना, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना, सिर्फ विवेकवान नहीं बनना, लेकिन विवेक के साथ बहुत भावनाएं भी चाहिए। भावनाएं और विवेक दोनों का बैलेंस है। भावनाएं कभी कभी अंधश्रद्धा की ओर ले जाती हैं। सिर्फ भावना है, जैसे भक्ति के अंदर भावना है, मूर्तियों के आगे भावना है, भावना का भाड़ा मिलता है, ऐसा नहीं अंधश्रद्धा ही सिर्फ है। भावना रखते हैं तो उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन बाबा कहते सदा काल की नहीं। और वो भावना कभी कभी अंधश्रद्धा का रूप ले लेती और हमारा सब कुछ चला जाता, धोखा मिल जाता। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि भावनाएं भी चाहिए लेकिन विवेक भी चाहिए। और विवेक और भावना का यदि बैलेंस है जीवन के अंदर तो बहुत सरल जीवन है, बहुत सहज जीवन है। इसलिए हर चीज में विवेक चलाना है, लेकिन हर बात में क्वेश्चन नहीं उठाना, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता, अब भोग लगाने के सिस्टम क्यों है, बाबा तो खाता ही नहीं है, ये क्यों भोग लगाती बहने, कई प्रकार के प्रश्न ऐसे तो उठाते हैं। लेकिन ये भावना भी तो है, भगवान को भोग करते हैं, ऑफर करते हैं, स्वीकार कराते हैं, उसकी दृष्टि पड़ती है, कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, खिलाने वाला वो है और हम अकेले खा रहे हैं, ये भावना है हमारी। और भावना के आधार से फल भी है। विवेक भी ये कहता है कि अगर हम कुछ समय मेडिटेशन में बैठते हैं तो शक्तिशाली हमारे वाइब्रेशन, हमारी सुभावनाएं और बाबा की शक्तियां उस भोजन को चार्ज कर देती हैं। कोई चीज में भी, जैसे आज हम खेती की बात करते हैं, हमारी बहन ने कहा बताना थोड़ा सा, हमने केवल एक प्रयोग कराया और वो भावना वाली माताएं अधिकतर इस सब्जेक्ट में पास हैं। विवेक चलाने वाले तो विवेक चलाते रहते, कैसे होगा ये, योग से खेती होती है क्या, कोई योग में खेत किया जाए, खेत में योग किया जाता है क्या? हम कहते हैं योग नहीं करो खेत में जाके, लेकिन पेड़ पौधों से प्यार तो करो, ये भी तो आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, ये भी तो प्रकृति है ना। अब भक्ति में तो उसको कहते थे जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, धरती माँ, इतना प्यार से कहते थे। जब जाते थे खेत के अंदर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फिर खेत में प्रवेश करते थे, बैलों की पूजा करते थे, गऊ को माता कहते थे। अब ज्ञानी बन गए तो इसका मतलब सबसे नफरत करेंगे क्या, विवेक क्या है? लेकिन बहुत भावना से, श्रद्धा से, समझ से, अपने अच्छे शुभ भावनाएं, शुभ वाइब्रेशन, अगर बीज को आप 5 दिन भी अपने घर में बाबा के सामने रख करके और उसकी बुआई कर दो, वो बीज 100% शक्तिशाली होगा, क्योंकि आपके शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन बीज को चार्ज कर देते हैं। हमने रिसर्च करवाई, हमने वैज्ञानिकों के आगे बात रख दी, बहुत अच्छी रिजल्ट निकली है। और वो बीज जिनमें खाद डालते हैं, जिनमें अनेक दवाइयां डालते हैं, वो 60% उगता है, और हमारा बीज जिसमें योग करके बोते हैं वो 90% 99% उग जाता है, उगने में ही अंतर आ गया। केवल हमने पहले रिसर्च इस पर किया और 2 बच्चियों से MSc करवाई पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो पास हो गई, केवल बीज के ऊपर मेडिटेशन करवाया। फसल तक पहुंचने के लिए अभी रिसर्च आगे चली। बहुत अच्छे हमारे शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन का जो ओरा है वो क्या नहीं कर सकता है। आप खेत के ऊपर जाते हो, आज किसी गाय के सामने, भैंस के सामने, कोई पशु के आगे अगर बहुत अच्छी भावनाएं, प्यार लेके जाते हो, वो चुपचाप ऐसे खड़े हो जाता सीधा। आप बहुत उसको प्यार से सहला दो, प्यार से बात कर लो उससे, फिर दूध आपको कितना देती प्यार से। अगर उसको डंडा दिखा दो, उसके आगे गुस्सा करो तो लात मार देगी आप, तो वाइब्रेशन है ना। अगर बच्चे के आगे आज स्थूल में छोटा बच्चा है, आपको पहचानता नहीं, आप मुस्कुराते हो, आप अच्छे वाइब्रेशन से ऐसे ऐसे करते हो, वो हंसने लगता है, आपको देखने लगता है, आपकी गोदी में आ जाता है, क्या संबंध है आपका? ये केवल हमारे वाइब्रेशन जो है, अच्छी विचारधाराएं प्रकृति को, पेड़ पौधों को, वनस्पति को, व्यक्तियों को, यही मनसा सेवा है, यही शुभ भावनाओं का दान है। इसी के ऊपर कल बाबा की मुरली चल रही थी, अभिक बाबा की परसों, कि बाबा की दृष्टि में, बाबा के वाणी में, बाबा के हृदय में, दिल में सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसलिए बाबा के कैसे भी बोल हैं सबको प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। कभी क्वेश्चन नहीं उठता कि बाबा ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या क्या बोलता था, अभी तो हमको एडिट करना पड़ता है क्योंकि विदेशी हैं, कई बच्चे नए नए आए हैं, कहते भगवान ऐसे बोलता है क्या। अरे भगवान तो इतना प्यार से बोला, ये भैंस बुद्धि, ये गधा बुद्धि, प्यार से बोला, इतने अच्छे प्यार के शब्द लगते थे कि बाबा ने ऐसे बोला। और आज सुनते हैं लोग, नए नए बुद्धि वाले आते हैं, भगवान ऐसे कैसे बोलेगा, ये भगवान के बोल थोड़ी हो सकते। अरे बाबा कहता था बच्चे, सौ सौ करो श्रृंगार, ये खोतरे का बच्चा खोतरा, मैं इतना श्रृंगार करता हूँ, इतना ज्ञान देता हूँ, इतना समझ देता हूँ, यहाँ कहते हाँ बाबा मैं तो तेरा हूँ, और बाहर जाके मिट्टी में लेट जाते हैं, ये क्या गद्दे के बच्चे नहीं है। मैं इतना इनको श्रृंगार करता हूँ, इतना इनको शिक्षाएं देता हूँ, यहाँ तो बड़े अच्छे साफ स्वच्छ बन के जाते, और बाहर जाते हैं तो देह मान की मिट्टी में खेल जाते। तो बच्चों को क्या कहेगा, वो प्यार से कहता था लेकिन आज सहन नहीं होता। तो बाबा की अथॉरिटी के बोल भावना थी प्यार की, वो शुभ भावना थी, रहम की भावना थी, कल्याण की भावना थी, उनको बहुत प्यारे लगते थे। केवल अपनी सूक्ष्म भावनाओं को चेक करो, हमारे अंदर की वृत्तियां, हमारी अंदर की भावनाएं क्या हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के कल्याण की भावना से बात करोगे और आपके बोल अथॉरिटी के भी होंगे, कड़े भी होंगे, तो भी उनको अच्छे लगेंगे, बहुत हमारे लिए शुभ चिंतक है, बहुत हमारे लिए इनका प्यार है, इसलिए ऐसा बोला। आप परिवार के अंदर प्रयोग करके देख लो, अगर आपकी भावनाएं उनके प्रति बहुत अच्छी हैं, आप कुछ भी उनको बोलोगे, अथॉरिटी से भी बोलोगे, कहेंगे देखो हमारे दादा की, हमारे भाई की, हमारे माँ की भावनाएं तो अच्छी है ना, इनकी भावनाएं हमारे लिए गलत नहीं है। जरूर सिखाने के लिए कभी डांटेंगे ना, गुस्सा करेंगे ना, लेकिन ये क्यों गुस्सा करता है, इसने क्यों किया, ये तो ज्ञानी है, ये जब जवाब आता है, माना हमारी भावनाओं के अंदर वो प्यार, वो रहम, वो कल्याण की कमी है। आप वो देखो कि हमारी भावनाएं किस प्रकार की है व्यक्ति के प्रति, तो हम वनस्पति से, पेड़ पौधों से, खेती में उन भावनाओं का प्रयोग कराते हैं और उसकी इतनी सुंदर रिजल्ट है। अगर आप देखें, एक बहन ने कहा कि मैंने एक प्रयोग किया, हमारे सेंटर पर एक चीकू का झाड़ था, जब आपने किताब निकाली तो हमने उस चीकू के सामने कहा, इतनी छोटे छोटे चीकू आते थे और अपने आप गिर जाते थे, कभी उसमें फसल अच्छी नहीं आई, तो हमने कहा योग के प्रयोग हम इस पर क्यों न करें, हमारे घर में पौधा है। सबने कहा दीदी ये काट दो, दूसरा लगा देते हैं। बोला नहीं, अभी हम योग का प्रयोग करें। कहती बहुत प्यार से मैं उसको, जब भोग का पानी होता ना, अमृत पानी, जो अमृत बनाते हैं ना भोग में, थोड़ा सा डाल देती थी और ऐसे तीन मिनट पांच मिनट ऐसे खड़े होके कहती थी ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, ये तो चीकू का पेड़ है, बहुत मीठे मीठे फल लगेंगे और जब फल लगेंगे ना तो मैं बाबा को इसका खिलाऊंगी। पांच दिन तक, कहती नहीं एक हफ्ता, एक हफ्ता कंटिन्यू मैं पांच मिनट उसके आगे ऐसे ही शांति योग का प्रयोग करने लगी। और उसके बाद जब उसमें फूल आए तो इतने अच्छे आए, फिर फल लगने लगे, कहती इतने बड़े बड़े चीकू आए। लोगों ने कहा दीदी आपने कौन सी कलम लगाई है, कौन सी खाद डाली है। न मैंने उसमें कोई खाद डाली है, न मैंने कलम लगाई है, केवल हमने प्रयोग करके देखा है कि हमारे विचारों का प्रभाव, हमारी भावनाओं का प्रभाव, ये वनस्पति, ये पेड़ पौधे, व्यक्तियों की नेगेटिव भावनाएं कई बार हमारे विचारों को कैच नहीं करने देती। आप प्रयोग करो किसी व्यक्ति के ऊपर, अपने संबंधी के ऊपर, अगर वो बहुत नेगेटिव है तो आपको समय लगेगा, क्योंकि उसकी अपनी ओरा जो है ना, अपना ओरा विचारों का। ये थोड़ा गहरी बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई बहुत व्यर्थ है, नेगेटिव व्यक्ति है और आप उसको सुधारना चाहते हो, आप उस पर योग का प्रयोग करना चाहते हो और आप एक मास दो मास प्रयोग कर रहे हो लेकिन वो सुधरता ही नहीं है, क्यों नहीं सुधर रहा है, आपकी इतनी अच्छी भावनाएं उसको क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि उसका जो ओरा है ना विचारों का, उसका जो आभा मंडल है वो बहुत नेगेटिव, बहुत खंडित है, वो आपकी भावनाओं को पहुंचती हैं लेकिन वो टकरा करके वापस कर देता है। अब पेड़ पौधों में वो नेगेटिविटी है ही नहीं, हमने उसको जहर खिलाया है, हमने उसको अनेक प्रकार के केमिकल्स डाले, लेकिन उसकी अपनी नहीं है कुछ भी। तो हमारी जो शुद्ध भावनाएं हैं वो फट से प्रयोग होती है। आप करके देखना, सभी करके देखना, हरेक का पेड़ पौधों से प्यार होगा, खेती नहीं है तो छोड़ो, लेकिन आपके घर में गमला है, फूल के पौधे हैं, फल के पौधे हैं, आप प्रयोग करके देखो, आप 15 दिन में रिजल्ट पाओगे कि हमारा बिल्कुल पेड़ हरा भरा हो गया, हमने वहां देखा, एक भाई कहता है, नाइजीरियन था, बिल्कुल नया आया था प्रोग्राम के अंदर। जब मैंने विधि बताई कि हम पांचों तत्वों का आह्वान करते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन करते हैं, कहता है भाई जी ये प्रयोग हमने अपने खेत पर एक बार किया था और एकदम उग नहीं रहा था, बहुत बहुत बड़ी फसल थी, उगता नहीं था। मैंने पौधों से बात किया, तुम क्यों मुड़ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसे ऐसे बात किया, वो हरे भरे हो गए, फिर से खिल गए। कहते हमने किया था लेकिन ये नहीं पता था ये हमारे विचारों के कारण उठ गए। तो हमारे विचार जितने श्रेष्ठ हैं, जितनी हमारी शुद्ध भावनाएं हैं, वो वातावरण को अपने आप प्रभावित करती हैं। इसमें आप कभी भी व्यर्थ और नेगेटिव को स्थान नहीं दो। आज बाबा इतनी मुरलियां चला रहा है, इतना हम बच्चों पर मेहनत कर रहा है, बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। व्यर्थ और नेगेटिव ही आपके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है और कोई बाधा नहीं है। ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, हमको यहां सहन करना पड़ता, वहां झुकना पड़ता, केवल आपके व्यर्थ संकल्प उसके लिए कई प्रकार के विघ्न उसके अंदर से ऊपर जा देते हैं, पैदा कर देते हैं। शुद्ध संकल्प, प्रयार के संकल्प, सबके भलाई के संकल्प करके अपने ऑफिस में जाते समय बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, शायद आपको एक मुरली याद हो, पुरानों को याद होगी। जब 71 में हमारा पहला ग्रुप विदेश गया, बाबा के सामने छुट्टी लेने आया, 8 भाई बहने थे, बहुत सारी आपस में डिबेट चल रही थी, कुछ ज्ञान में शायद हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ नियम हमारे बदलने पड़ेंगे, वो लोग तो सुबह उठते ही नहीं हैं, कभी सूरज देखते नहीं हैं, इतनी ठंडी होती है, वो सवेरे स्नान कैसे करेंगे, लेटरिन जाकर के कोई स्नान ही नहीं करते हैं, फिर वो ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करेंगे, बहुत सारे प्रश्न थे। मुझे याद है शुरू शुरू में जब मैं मधुबन में आया, विदेश में जब भाई बहने जाने लगे तो आपस में चर्चा होती थी कि हम शायद अपने कुछ नियमों को ढीला छोड़ेंगे उनके लिए। बाबा आ गए, अचानक आए, बाबा से मिलने के लिए वो गुरु बैठा, बाबा कहता बच्चे जहां जा रहे हो वहां की सेवा की है। सोचने लगे जाके सेवा करेंगे ना, और बाबा कह रहा है जहां जा रहे हो वहां सेवा की है, तो सब सोचने लगे बाबा क्या कह रहा है, क्या पूछना चाहता है। बाबा ने कहा बच्चे जिस स्थान पर आप जाते हो आप पहले अपने सूक्ष्म शरीर से वहां पर पहुंचो और उनको शुद्ध प्रेरणाएं दो। सब जगह बाबा के लाल हैं, सब जगह बाबा के छिपे हुए बच्चे हैं, नेगेटिव संकल्प करके नहीं जाना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारा ज्ञान ढीला होगा, मर्यादाएं कुछ नहीं होगा। जो नियम है, जो मर्यादाएं ब्राह्मणों के लिए यही है, इसमें कोई ढिलाई नहीं है। आप अपनी शक्ति से बाबा की सेवा के लिए जा रहे हो, पहले वहां अपने शुद्ध संकल्प से सूक्ष्म सेवा करो। और ये गए, उनको बने बनाए स्थान मिले, बने बनाए बच्चे मिले सामने से आकर के, और आज कितने पक्के हैं। हम लोग नियमों में लूज हो जाएं, वो बाहर का एक चीज नहीं खाते, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करते, कितने बाबा के पक्के बच्चे हैं। नाइजीरियंस को मैंने देखा, जो काले काले लोग हैं, जिनकी एकदम खान पान सब प्रकार का अलग है, वो बाबा के बच्चे। नैरोबी के अंदर 13 नौकर हैं, नौकर 13 हैं सेंटर पर, पहरा देते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सफाई करते हैं, सब प्रकार का ये मना इतना बड़ा सेंटर संभालते हैं। 7-6 दिन अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, वहीं पर उनको किचन बना के दिया है, एक दिन बहने उनको बना के खिलाती हैं। हमने कहा ये लोग बाहर नॉनवेज खाने वाले हैं, लहसुन प्याज खाने वाले हैं, सेंटर पर भोजन बनाने के आपने क्यों छुट्टी दिया, मैंने प्रश्न किया। कहती इनसे पूछो कोई भी लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, सब पक्के हैं, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता, सब बाबा के पक्के बच्चे, रोज मुरली सुनते हैं, क्लास करते हैं, हम इनको भोजन खिलाते हैं एक दिन हफ्ते में भोग, लेकिन अपने हाथ से बना के खाते हैं, तब सेवा करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा नियम मर्यादाएं गलत हैं या हम उनके आगे झुकेंगे, नहीं। हर स्थान पर बाबा के बच्चे हैं और हमारे बहुत अच्छे देवता घराने की आत्माएं छिपी हुई हैं, इसलिए अपने नियमों को लूज नहीं करना है, अपनी मर्यादाओं को लूज नहीं करना है। कैसे होगा, क्या होगा, बाबा कहता है लव भी है तो लाभ भी है, लवफुल बनो लेकिन लाभ छोड़ करके लवफुल नहीं बनना। ईश्वरीय कायदे हैं, ईश्वरीय नियम है और नियम में बल है। आज नहीं मानते, आज विरोध करते हैं, आज आपसे टकराव करते हैं, अगर आप 1 महीना 2 महीना भी अपने नियमों में पक्के रहो कहेंगे आपके नियम बड़े अच्छे हैं, आपको मानना पड़ेगा, आप बड़े पक्के हैं। लेकिन क्या करूं, शादी में जाना पड़ता है, रंगीन ड्रेस पहननी पड़ती है, वहां तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे तो सन्यासी हो गए, ब्रह्मा कुमारियों की ग्लानी करेंगे। भले करें ना, हम अगर पक्के हैं और हम पक्के होकर के जाते हैं, हम उनके पास जाके उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, सौगात भी देते हैं, उनके पास जाकर के फल या कोई ऐसी चीज ले लेते हैं, प्यार से समझा देते हैं, ये हम भोजन नहीं कर पाते हैं, हम नहीं करते, हमारे योग के लिए हमारी साधना में विघ्न है, इसलिए हम इसको त्यागा है। इसकी कोई हमारी आपसे परहेज नहीं है, हमारी अपनी परहेज है। अगर प्यार से कोई समझाता है, प्यार से बात करता है, तो वो लोग मान जाते हैं। और अगर एक दो बार विरोध भी करते हैं, आपने सुन लिया और आप पक्के मुस्कुराते हुए वहां से आ गए, आपका रास्ता खुल जाएगा, आगे के लिए आपको कोई नहीं बंधन डालेगा। लेकिन क्या करूं, करना पड़ता है, ऐसा है वैसा है। बाबा कहता जहां बहानेबाजी है वहां तो कोई का बस नहीं है। कितने भी प्रश्न आप पूछोगे, ऐसा करना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा क्या कहेगा? बाबा से अगर कोई कुमार आके बोले मेरे मम्मी पापा बहुत तंग करते हैं, मैं अकेला हूं, क्या करूं बाबा, शादी करनी पड़ेगी, बाबा हाँ हाँ बच्चे जरूर करो जरूर करो, मना करेगा? मना करेगा बोलो। अच्छा कोई बहन माता आए कहे भाई क्या करूं, मुझे तो रंगीन ड्रेस पहननी पड़ती है, मुझे तो सासू के हाथ का या बहू के हाथ का खाना पड़ता है, मैं क्या करूं? ले खाओ ना बच्ची, मना किसने किया है? अगर बाबा मना कर दे और फिर आप कर लो तो डबल पाप चढ़ जाएगा। एक तो मना किया हुआ है, भाई देवता बनना है, इतनी ऊंची स्थिति पर हमको पहुंचना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, बाबा के समान बन करके हमको फरिश्ता बन करके जाना है, सब लक्ष्य दे दिया। अब उस लक्ष्य के बीच में जो रुकावटें हैं उनको पार करना हमारा काम है, बाबा क्या करेगा? बाबा आपको साथ देगा, मदद देगा, कहेगा बच्चे एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, मैं हजार गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ हूं। आप एक हिम्मत नहीं बढ़ा रहे हो, करना पड़ेगा तो करो, संकल्प तो पक्का रखो, बाबा आपको मदद करेगा, कहीं से रास्ता निकालेगा। लेकिन पहले ही कमजोर हो संकल्प में तो बाबा क्या करेगा? इसलिए ध्यान रखो कि बाबा हमारा साथी है, वो जवाबदार है, और हर जवाबदारी हर सेवा बाबा को अर्पित करो। बाबा आप बैठे हो ना, बड़ा घर में बैठा होता बच्चे चिंता करते हैं क्या? जब बड़ा बाबा परसों मुरली में क्या कहा, दो बड़े बाबा तुम्हारे साथ हैं, एक शिव बाबा एक ब्रह्मा बाबा, दो बत्तियां जिसके साथ हैं, दो बड़े बाबा जिसके साथ हैं, एक राइट एक लेफ्ट, दोनों के बीच में बिठा के बैठ जाओ बीच में। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं विदेश जाता हूं मुझे इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती, मैं अकेले घूमता हूं, इतनी सारी सेवाएं करके आता हूं, कुछ नहीं होता। बाबा बैठा है एक तरफ शिव बाबा एक तरफ ब्रह्मा बाबा, मैं बीच में, कितना सेफ्टी है मेरी, क्या कोई करेगा? कितने लोग कहते ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा, बाबा हमारे साथ है। निश्चय की विजय है, दृढ़ता से सफलता है, हिम्मत में मदद है, और लगन है तो विघन क्या करेंगे? लेकिन लगन की कमी है तो विघन ही विघन है। इसलिए हर एक अपने आप को चेक करो, हमारी लगन कितनी है, कौन कौन से विघ्न आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, विघ्नों का कारण कहीं मेरे नेगेटिव संकल्प ही तो नहीं है? हमारे साधारण व्यर्थ नेगेटिव संकल्प ही अनेक विघ्नों को जन्म देते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा साधारण नहीं संकल्प करो, हम तो बाबा के हैं, बाबा हमारा साथी है, वो हमारा सारथी है, वो हमें पार लेकर के जाएगा। ऐसे शक्तिशाली बन करके बेफिकर बादशाह, अति इंद्रिय सुख का अनुभव। हम तो कहते हैं अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी क्यों, उसके भेंट में तो दुख है। हम तो योगी हैं, योगी तो परमानंद की अनुभूति करते हैं। योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है, जिसकी भेंट में दुख ही नहीं, गम है ही नहीं। ऐसी तपस्या करो, ऐसा बाबा को साथी बना लो जो दुख और गम आए ही नहीं, तब कहेंगे ये है योगी, बाबा के सच्चे पक्के बच्चे। खेल पाल करने वाले, संबंध निभाने वाले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन तपस्या करने वाले, मिलन मनाने वाले, उसकी मर्यादाओं और नियमों को पालन करने वाले परमानंद की अनुभूति। कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, भगवान बैठा है वो हमारा साथी। ओके, ओम शांति।
हम सबको बहुत बहुत भरपूर किया। भाई साहब कह रहे थे तो मुझे एक बात याद आ रही थी, मीटिंग में कुछ बहनें मिली थी अलग अलग जगह की, तो मध्य प्रदेश में एक माता अकेली थी, उनका एक छोटा खेत था, तो जब ओले पड़ रहे थे इन दिनों में, आपको पता है ना ओले पड़े खूब जगह पे, ईसब गोल का खेती था उनका, तो वो कहती है कि जब वो गई कि बेंजी को बता के गई कि मुझे ओले पड़ने की सूचना है, तो वो गई खेत को थोड़ा देखने के लिए, तो बहुत वंडरफुल सीन देखती है कि खेत के इस बाजू का खेत, यहाँ लेफ्ट राइट वाला खेत, सब जगह ओले पड़े हैं, केवल उसकी ईसब गोल की खेती खड़ी है उसमें। तो वो थोड़ा थोड़ा योग करती थी ना, और सेम अनुभव एक महाराष्ट्र के भाई ने सुनाया कि उसकी कपास की खेती थी, उसका भी सेम अनुभव था कि लेफ्ट राइट आगे पीछे के खेत के अंदर ओले हैं और कपास, उसका कपास खड़ा है ऐसे कैसा। और विशाखापट्टनम में तूफान आया तो वहां की बहन ने बहुत अच्छा, बिल्कुल सागर के किनारे उनका सेंटर है।
विशाखापट्टनम का मैं सुना था।
हाँ वो सुनाई।
मैं विशाखापट्टनम गया था, चार फैक्ट्रियां हैं दवाई की, वहां फैक्ट्रियां बहुत हैं, तो चारों फैक्ट्रियों के सारे मैनेजर्स और एमडी को इकट्ठा किया। मैं माउंट आबू से आया हूँ इसलिए मेरे लिए उनको सबको इकट्ठा किया, 150 लोग थे सारे अधिकारी। अरे एक एक कहे मेरी फैक्ट्री में चलो, मेरी फैक्ट्री में क्यों, फैक्ट्री में चलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कहते हमने अपने फैक्ट्री में बाबा कमरा बनाया, बाबा कमरा, सब ने एमडी ने बोला, और सब बाबा के लिए इतना सहयोगी, माना जो जिसके पास जाओ वो कुछ ना कुछ चेक देगा, ड्राफ्ट देगा, कैश देगा, कुछ देगा जरूर। और बहन कहे आप चलो ना भाई जी, हमने कहा बहन मैं इतना थक के आया हूँ, मैं भट्टी करा के निकला हूँ, इतना ट्रेवल कर, नहीं नहीं आप 5 मिनट चलो, ठीक है चलो, ले गई मेरे को। एक फैक्ट्री के में पहुंचा तो गेट से प्रवेश हुआ, बाबा का कमरा बहुत बढ़िया गेट के ऊपर ही बनाया हुआ था। मेरे को गाड़ी रोक दिया, कहता यहाँ पर बाबा का योग रूम है, आप चलेंगे, हमने कहा चलो, उतर के गया। कहता है इस फैक्ट्री के अंदर कोई भी वर्कर या कोई भी मैनेजर्स बिना यहाँ योग किए हुए अंदर नहीं घुस सकता, कंपलसरी हाजिरी देनी है, यहाँ 5 मिनट बैठना है फिर जाना आगे। मैंने कहा क्या अनुभव, क्या है इसका, क्या रिजल्ट है। कहती देख लो पूरे आंध्रा में इतना तूफान आया, इतनी फैक्ट्रियों में नुकसान हुआ, इतने पौधे गिरे, इतने बिजली के खंभे टूटे, और हमारी फैक्ट्री इतनी सेफ है, कुछ भी नहीं हुआ, ये भगवान रक्षा करता है। सब दिखाया उसने, और उसके बाद मेरे को फिर दूसरी फैक्ट्री में, तीसरी फैक्ट्री, सब जगह बाबा का झंडा, सब जगह बाबा के कमरे, और इतनी भावना, इतनी श्रद्धा, बात में पूछो मैं क्या बताऊं। कहते भगवान को भी वंदना पड़ता है, मेरी थकावट सब दूर कर दिया उन्होंने, सब जगह लेके गए और कहे देखो यहाँ पर हमारे लोग एम्प्लॉई कितने भी काम करने वाले हैं, सब मेडिटेशन करते, अब पवित्र नहीं है कोई, सब ज्ञानी नहीं है, लेकिन एक भावना से आके मंदिर समझ करके भी 5 मिनट बाबा के आगे बैठते हैं। शिव बाबा की कास्केट है और ब्रह्मा बाबा का वो लाइट में वो फोटो आता है ना छोटा सा, वो दिखाई देता है, ऐसे फोटो नहीं रखा है बाबा का, ऐसे ही कमरा बनाया है, और सब जगह हर फैक्ट्री में बाबा का कमरा, और सब जगह बाबा का, शिव बाबा का झंडा, और सब सेफ है। तो ये बाबा का मैं समझता हूँ बहुत चमत्कार नहीं है, लेकिन हमारी श्रेष्ठ संकल्पों की ऊर्जा है, शुद्ध संकल्पों की ऊर्जा प्रकृति की सेवा करती है। प्रकृति की सेवा और कैसे करोगे, और जिन बच्चों ने पांचों तत्वों के प्रकृति की सेवा की है उनको कैसे प्रकृति नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं, प्रकृति पति हमारा बाप, प्रकृति हमारी सतयुग त्रेता में सेवाधारी, अभी वो नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम 10 मिनट भी रोज शुद्ध संकल्प करके अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल सबको सामने लाएं और उनको सकाशते हैं शांति की, शांति की, शांति, धरती हिलेगी आपका मकान नहीं गिरेगा, बाबा रक्षा करेगा। बाबा कहता था उस विनाश में आपका मौत नहीं होगा, लेकिन आप स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे, जाना तो सबको है, शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन विनाश में विनाश हो जाए ऐसा नहीं होगा। इसलिए उस समय हमको सेवा करनी है, ऐसे समय पर हमको फरिश्ता बन करके उनको मदद करनी है और अपनी स्थिति बहुत ऊंची बनानी है, भावनाएं बहुत अच्छी रखनी है। ओके चलो, चलो ओके, 5 मिनट योग करो, शुद्ध संकल्प का घेरा बनाओ, ऐसे अनुभव करो कि चारों तरफ लाइट का ये ओरा है और मैं आत्मा मणि के रूप में यहाँ चमक रही हूँ, बाबा की लाइट इस मणि पर पड़ रही है और चारों तरफ से फैल रही है।
हम सभी भाई साहब को धन्यवाद करेंगे 1-8 की ताली से, और जिनको रुचि हो शाश्वत योगिक खेती हिसार में, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी होगा ना एग्रीकल्चर का, तो आप भी थोड़ा सेवा वहाँ के देखो, आप जो पढ़े लिखे भाई हैं थोड़ा संपर्क करके, और हमको भी, हम भी सोचे थे भाई साहब जोधपुर में तो 3 है, इस बार फ्यूचर ऑफ पावर में भी बुलाए, हाँ कुछ पैम्फलेट ऐसा जो कि उनको रिक्वेस्ट करे, आपके जो लेक्चर अनुसंधान हुए उनका कोई प्रोजेक्ट पे हम डिमोन्स्ट्रेशन, हाँ जी,
जिसको भी जानकारी इसके लिए चाहिए तो पूरा मटेरियल और जानकारी, यहाँ एक भाई बैठता है, यहाँ ऑफिस है हमारा लिटरेचर के ऊपर, ग्राम विकास का अलग से ऑफिस है, तो वहाँ रूरल विंग की कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, सुमंत भाई वहाँ बैठता है। वेबसाइट जिनको पता है www.yogikkheti.org, योगिक खेती YOGICKHETI, yogikkheti.org, आप इस पर सब कुछ ले सकते हैं।
थैंक यू, शांति।